विषय में जानने वाले, बहुत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले, इसके अतिरिक्त भी आप सब भगवान की लीलाओं को जानने वाले, आप बतलाने में समर्थ हैं, हमको कुछ संदेह भी है, आप इसका निराकरण कीजिए। क्या संदेह? रोहिण्या स्तनय, रोहिणी के जो तनय, आपने जो पहले प्रोक्ता मैंने बतलाया है, जो राम हैं और शंकरस्नस्तदा, उन्हीं को शंकरषण भी कहते हैं, इनको पहले तो बतलाया रोहिण्या स्तनय, और एक ही जन्म में बिना मरे हुए दूसरा शरीर धारण किए, उसी जन्म में ही देवक्या गर्भ संबंध कुतो, देवकी के गर्भ में कैसे पहुंच गए और फिर वहां से निकल करके फिर रोहिणी के पुत्र बन गए। आपने पहले बतलाया जो रोहिणी के गर्भ से बलदेव जी का जन्म हुआ, और आपने फिर बतलाया जो देवकी के गर्भ से शंकरसन पैदा हुए और वो भी रोहिणी वहां पर गए गोकुल में, तो उनका तो कोई मृत्यु हुई भी नहीं, दूसरा देह भी धारण नहीं हुआ, ये कैसे संभव हुआ? एक ही जन्म में बिना मरे हुए दूसरा शरीर लिए हुए, और ये दोनों के पुत्र, रोहिणी के पुत्र, पुत्र भी और देवकी के पुत्र कैसे हुए? कस्मान मुकुंदो भगवान पितृगृहात ब्रजम गत, किस लिए मुकुंद, मुकुंद भगवान जो मुकुंद हैं, पितृगृहात अपने पितृगृह माने मथुरा, मथुरा को छोड़ करके ब्रजम गत, ब्रज में गए। इसे ये मालूम हो रहा है कि परीक्षित महाराज जी ये कह रहे हैं ये कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव से हुआ, और ये अपने पिता को घर को छोड़ करके ब्रज में चले गए। क्यों चले गए? वास ज्ञाति भी सार्धम, और अपने ज्ञातियों के साथ में कृतवान शाश्वतान पति, जादवों के जो पति हैं, ये कितने दिनों तक ज्ञातियों के साथ में इन्होंने वास किया, सगे संबंधियों के साथ में निवास किया, और भी ब्रजे बसन किम अकरो मधुपुरियां चकी सब, अब ब्रज में रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किया, कौन कौन सी ब्रज में रह करके लीलाएं की, मधुपुरियां च मधुपुरी में भी, च के द्वारा द्वारकापुरी में भी, मथुरा द्वारकापुरी और ब्रज में रह करके उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की, कौन केशव, पहले बतलाया मुकुंद अब केशव को कहा, ये केशव क्यों ऐसी लीलाएं की, कौन कौन, और भ्रातृ च अपधी कंसम मातुरधा अतदर्हणम, और अपनी मैया, मैया कौन है, कृष्ण की, केशव की, देवकी, देवती के जो भाई हैं कौन कौन से, उनको क्यों मारा, अर्थात तो उन्होंने अपने मामा को ही क्यों मारा जो कि मारने लायक नहीं है, माता का भैया वो मारने योग्य नहीं, उसको क्यों मारा उन्होंने? देहम मानुषम आश्रित, और मनुष्य देह नरदेह को प्राप्त कर कति वर्षाणि विष्णु भी विष्णुओं के साथ में कितने वर्ष तक रहे, जदुपुर ज्ञान सह आवासित पत्न्या कतम अभवन प्रभो, उनकी द्वारका में कितनी पत्नियां थी, कितने पुत्र प्रपौत्र हुए और क्या क्या लीलाएं की, आप हमको बतलाएं। ये संक्षेप में इन श्लोकों का, अब हम लोग विशद रूप में कुछ कुछ टीकाकारों के अनुसार में हम लोग कुछ चल रहे हैं। नौवें स्कंद में, अभी दसम स्कंद आरंभ हो रहा है, नौवें स्कंद में परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया सूर्य वंश और चंद्र वंश, इनके बड़े बड़े राजाओं का इतिहास वर्णन, जदु महाराज जी का बतलाया, और परम धार्मिक लोग हैं, रामचंद्र जी का जन्म और उनकी लीलाओं का बतलाया। बतलाने के बाद में अब वही कह रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, बलम गदम सारं च दुर्मदम विपुलम ध्रुवम वसुदेव वसुदेवस्तु रोहिण्या कृत अनुपपादयत। वसुदेव जी की बहुत सी स्त्रियां थी, जिसमें रोहिणी जी की बहनी 6 या 7 सुनी जाती है, जो उनके साथ में विवाहित हुई थी, और अंत में सबसे छोटी थी कनिष्ठ स्त्री देवकी। देवती का पीछे सबसे विवाह हुआ था, उसके पहले बहुत रोहिणी का पहले विवाह हुआ। तो रोहिणी के गर्भ से उनको बलदेव गद सारण दुर्मुद विपुल ध्रुव कृत इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए रोहिणी के गर्भ से। और वसुदेव जी से देवकी के गर्भ में 8 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, और पीछे से एक और कन्या सुभद्रा है। 8 पुत्र जो हुए, कृतिमंत सुसेन भद्र भद्र मृदु संवर्धन भद्र संकर्षण अंत में ये कृष्ण, और पीछे से हुई सुभद्रा। अब ये करें कि पहले उसने बलदेव जी का जन्म बतलाया, रोहिणी का पुत्र बतलाया, उनसे हुए, और संकर्षण पैदा होते हैं देवकी के गर्भ से। ये दोनों एक हैं, तो दोनों माताओं के गर्भ से इनका जन्म क्यों बतलाया? परीक्षित महाराज, हमको इसमें संदेह हो रहा है, इसलिए उन्होंने पूछा। इसका उत्तर उन्होंने दिया दूसरे पुराणों में, इसमें भी बतलाया है, किंतु उसमें जरा गंभीर है बिचारे, इसलिए उसको समझ नहीं पाते हैं। बलदेव जी का ही दूसरा नाम संकर्षण है। संकर्षण दो हैं, मूल संकर्षण और महासंकर्षण। द्वारका में मूल संकर्षण और बैकुंठ में महासंकर्षण। ये बलदेव जी को संकर्षण किस लिए कहते हैं? इसलिए देवकी के गर्भ में 7वें के संतान के रूप में आए, और रोहिणी जी के भी गर्भ में हैं, रोहिणी के गर्भ में पहले से हैं। इनके गर्भ से जोग माया ने कृष्ण के आदेश से आकर्षण करके, संकर्षण करके, सम्यक रूप से कर्षण करके, और लेकर के रोहिणी के गर्भ में दे दिया। रोहिणी के गर्भ में पहले से तो पुत्र थे ही, ये दोनों मिलकर के एक, और उनके गर्भ से पैदा हुआ। लोगों ने समझा ये देवकी का गर्भ श्रावित हो गया, नष्ट हो गया, जोग मैंने ऐसी लीला की। किस लिए? कंस को छकाने के लिए, कंस उनको मार न सके, इसलिए उन्होंने ऐसी, इसलिए इनका जन्म दोनों जगह ही वो ठीक है। परिपूर्ण रूप में रोहिणी के गर्भ से, और अंश के रूप में देवकी के गर्भ से जो निकले। भगवान का अंश भी पूर्ण होता है, अपूर्ण तो पूर्ण रहता ही है, इसलिए संकर्षण भी जो इनके गर्भ से पैदा हुए, ये भी पूर्ण हैं, किंतु बलदेव जी पूर्णतम हैं। इनमें ऐश्वर्य है, षडैश्वर्य, और बलदेव जी षडैश्वर्य को दबाकर मधुर लीलाएं कृष्ण के साथ में भाई के रूप में, अबोध के रूप में कर रहे हैं। कृष्ण का यही है, इसलिए इन्हीं को अनंत भी कहते हैं, इनका अंत नहीं है। बलराम इसलिए अद्भुत बलशाली हैं, अद्भुत सुंदर हैं, सर्वत्र रमण करते हैं, इसलिए इनका नाम राम है। इसलिए ये कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ आप हमको बतलाइए। इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी पीछे से दे और कस्मात मुकुंदो भगवान पितृगृहात ब्रजम गतः, किस लिए मुकुंद भगवान पितृगृह से मथुरा से गए गोकुल में। परीक्षित महाराज जी मथुरा के रहने वाले हैं और कृष्ण से इनका संबंध है। कौन कृष्ण से? वसुदेव वाले जो हैं मथुरा वाले कृष्ण से इनका संबंध है। सुभद्रा जी के ये भाई हैं, बड़े भाई, और सुभद्रा जी के पुत्र अभिमन्यु और उनकी पत्नी है
उत्तरा,
उत्तरा उसके पुत्र हैं परीक्षित महाराज। इसलिए इनका इस मथुरा वाले कृष्ण से इनका संबंध है वासुदेव कृष्ण से, इसलिए ये जानते हैं इनका जन्म यहीं पर, क्योंकि मथुरा में जितने लोग हैं या द्वारका में सबसे यही सुनते हैं ये कृष्ण जो हैं ये हमारे ही यहीं पर उनका जन्म हुआ। उनको ये विश्वास नहीं है कि उनका वृंदावन में जन्म, इसलिए ऐश्वर्य भाव वाले लोगों को सबको ऐसा ही पता रहता है कि वो उनका जन्म मथुरा में ही। किंतु ब्रज के रहने वाले लोग या मधुर रूप से जो उनकी उपासना करने वाले हैं, व्यास जी ने भी, ब्रह्मा जी ने भी, सुखदेव गोस्वामी ने पीछे से खुल करके ये बतलाया। इसी अभी परीक्षित महाराज जी को प्रसन्न रखने के लिए अभी ज्ञान में रह करके उनको ऐसा बतला रहे, किंतु जब कृष्ण लीला में विवश हो जाएंगे तो वो अपने आप उनके मुख से निकल जाएगा जो ये नंदनंदन है या यशोदानंदन है। मुकुंद परीक्षित महाराज जी देख रहे हैं, ये मुकुंद जो कृष्ण हैं, मुक्ति शिखम कु कुत्सितम कृत्वा परमानंदम ददाति इति मुकुंदम। जो पहले एक होता है मुंह माने ये मुक्ति को देने वाले हैं वो मुकुंद है, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदम। मथुरा में कौन लोग हैं? मथुरा में साधारण रूप में कुछ लोग हैं जिनको मुक्ति नहीं भी है, मुक्ति है भी, जैसे कंस इत्यादि जो राजा हैं उनके भाई लोग हैं, उनके सैन्य सामंत हैं, जैसे वो जिसका गला काट दिया धोबी है, और कंस के जितने भी परिकर हैं वो मुक्त नहीं। पुतना अगासुर बकासुर ये कंस के जो परिकर हैं ये सभी लोग मुक्त नहीं। वसुदेव जी देवकी अक्रूर उद्धव ये सब मुक्त हैं, कृष्ण के लीला के परिकर हैं। इसलिए मुक्ति को जो देने वाले जो कृष्ण हैं वो मथुरा में उनका जन्म हुआ है। परीक्षित महाराज जी का कुछ भाव ऐसा है तो वो मथुरा में जन्म लेते हैं, किंतु जन्म लेकर के ब्रज में जाते हैं। क्यों? ब्रज में जितने लोग हैं सब मुक्त हैं, यहाँ की तृण गुल्म लता कीकट सांप बिच्छू गधे घोड़े जो कुछ हैं वो सब मुक्त हैं। मुक्त माने भी मुक्त से भी ऊपर मुक्त हैं, उन लोगों को प्रेम भी प्राप्त है, इसलिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है कृष्ण को? वो तो मथुरा में रहे मुक्ति दें, वहाँ पर तो मुक्ति किसी की जरूरत है ही नहीं, सभी मुक्त हैं प्रेम में भरे हुए, इसलिए वहाँ पर क्यों जाएं? ब्रजम गत स्वभाष ज्ञाति भी सार्धम, और वहाँ पर उन लोगों के साथ में ज्ञातियों के साथ में क्यों रहे? ज्ञाति किसको कहते हैं? ज्ञाति कहते हैं जिससे ब्लड रिलेशन हो, रक्त का संबंध हो। भगवान का कोई रक्त का संबंध है? उनका तो कोई रक्त का संबंध नहीं, उनका कौन बेटा है बेटी है मैया है बाप है? वो तो अजा हैं। और जगत के पहले भी थे, जगत के बाद भी रहेंगे, उनसे समस्त जगत निकलता है, फिर उनका बाप कौन होगा, मैया कौन होगी, इसलिए कोई भी उनका ज्ञाति कौन हो सकता है। हाँ, जब ब्रज में जाते हैं तो वहां पर हो जाता है, उनका जन्म भी हो जाता है, ज्ञाति भी हो जाता है। तो ये करें जी, वो जो भगवान है जो यहाँ पर प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, संघ चक्र गदा पद्म लेकर के, वो तो अजय हैं, तो उनसे ज्ञाति संबंध कैसे हो गया और उनके साथ में इतने दिन तक निवास किया, कोई उनका भाई बन गया, कोई सखा बन गया, कोई सखी बन गई, कोई कुछ है और उनके साथ में संबंध, ब्लड रिलेशन वहाँ पर मिला है। मथुरा में भी और द्वारका में भी ब्लड रिलेशन है, तो ये प्रभु को कैसे ये इन्होंने ग्रहण किया। विशेष करके कह रहे हैं, मुकुंद का अर्थ बतला रहे हैं, एक मुकुंद का और अर्थ है, मुक्ति सुखम को कुशतम कृत्वा प्रेमानंदम ददा। मुक्ति सुख कैसा है, अत्यंत घृणित है, इस चीज को बतलाते हुए, अनुभव कराते हुए उसको दूर करके प्रेमानंद दान करने वाले हैं। तो ब्रज में ऐसा कोई है जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है? मुक्त तो सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है। बाहर से अघासुर बकासुर ये सब गए ब्रज में, किंतु ये ब्रज के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको किसी को मुक्ति दिया है, जो बड़े बड़े कष्टों से भी हजार हजार लाख लाख जन्म तक तपस्या करने पर भी जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, और ये असुरों को मार करके अनायास ही ये मुक्ति दे दिया। किंतु जो असुरों को चीज देते हैं वो कैसे आनंददायक होगी, इसलिए साधु पुरुष वो ग्रहण नहीं करते। इसलिए भक्त लोग कोई भी भगवान के जाच कहने पर भी देने पर भी ये इस मुक्ति को नहीं लेते, क्योंकि उसमें आनंद की अनुभूति नहीं रहती, उसमें मिल करके एक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि उसको तुच्छ बतला कर, घृणित समझा करके, उपलब्धि करा करके प्रेमानंद देते। किंतु ब्रज में ऐसा कोई है जिसको प्रेम नहीं है, फिर भी वो किस लिए जाते हैं? इसलिए कि प्रेम से भी ऊपर उन गोपियों के साथ में जो क्रीड़ाएं हैं उन सबको पूर्ण करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए ये वहां पर जाते हैं। दीक्षित जी ने भगवान से ये पूछा कि ज्ञातियों के साथ में, संबंध सगे संबंधियों के साथ में मथुरा से ब्रज में जाने पर उनके साथ में कितने दिन रहे, इसमें भी कुछ गूढ़ बातें हैं। उनका मनो यह भाव है, बिना संबंध के ज्ञाति कोई नहीं बनता है। ज्ञाति कौन है? जैसे भाई है, पिता है, माता है, बहन है, फूफा है, फूफी है, चाचा है, ये सब ज्ञाति। तो कृष्ण का तो ऐसा नहीं है, फिर उनको ज्ञाति क्यों कहा गया? कहते हैं अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाप ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाद स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया। भगवान का जन्म नहीं है, बात ठीक है, कोई उनका ज्ञाति इत्यादि कुछ नहीं है, भक्तों का ही नहीं है, जीव मात्र का भी नहीं है, ये तो सब माया के खेल हैं। ये मेरे पिता हैं, माता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, कुछ दिन के लिए है, तो भगवान का कैसे होगा? कहते हैं कि मैं योग माया से जगत में अवतीर्ण होता हूं। गीता के द्वारा इसको कह रहे हैं, मैं अज होकर के भी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के अपने स्वाभाविक प्रेम से वात्सल्य भाव से जीवों के साथ में ये संबंध में काम करता हूँ। मैं नहीं बल्कि वही कायम करते हैं। ये संबंध चार प्रकार के माने गए, पांच प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला तो कोई संबंध नहीं, शांत दास सख्य वात्सल्य बन गए। भगवान का प्रेम मथुरा में ज्ञाति के रूप में माता पिता भाई इत्यादि के रूप, और वृंदावन में प्रेम के ऊपर में वो प्रतिष्ठित है। यशोदा जी कहती हैं कि वो हमारा पुत्र हो चाहे न हो, किंतु हमारा बेटा ही है, वो भले ही छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। पूर्णमासी जी राधा जी से कह रही हैं, यदि वो तुमको छोड़ सकते हैं तो तुम नहीं छोड़ सकती? तो वो कहती हैं, भले ही वो छोड़ दें, हमारे आंखों के सामने दूसरों से प्रेम करें, द्वारका में इतनी महिषियों के साथ में रहें, किंतु मेरे प्राणनाथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता। ये जब ब्रज के जितने लोग भी हैं ऐसे, उनका प्रेम के ऊपर में प्रतिष्ठित है सब कुछ, भले ही पुत्र न हो। यशोदा जी कहती हैं, मैं जा रही हूँ मथुरा, नंदगांव से आ रही हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी। कहाँ जाएगी? मैं जाऊँगी देवकी के राजभवन में, और देवकी के चरणों में विनय प्रार्थना करूँगी कि हे देवकी रानी, आप अपनी दासी बना लीजिए, आपके घर में चौका बर्तन करूँगी, और तुम्हारे पुत्र का एक बार दर्शन करा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। देवकी ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा इनका भाव, वैसे गोपियों का भाव, सखा का भाव ऐसा। इसलिए भगवान प्रेमाधीन है, यशोदा को इतना स्नेह है कि पूर्व जीवन में द्रोण और भरा के रूप में उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना किया है कि आपके प्रति हमारा प्रेम हो, वात्सल्य भाव, उनको इस जन्म में वही मिला, और देखो वसुदेव ने कहा कि हमारे पुत्र हों, तो उनके पुत्र के रूप में आए, यशोदा के ही पुत्र के रूप में आए हैं, तो भी साधारण लोगों के लिए ऐसा कह रहे हैं। और भी ये बतला रहे हैं, मथुरा वासी जो हैं, जबकि कृष्ण नंदगांव से ब्रज से मथुरा आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की नंद बाबा और यशोदा जी और सबके सामने ब्रजवासियों से, मथुरावासी आत्मीय स्वजनों का प्रतिविधान करके कुछ दिनों में ही हम लौट आए। कहाँ लौट आएंगे? अपने माता पिता के पास, उन्होंने ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए इसे मालूम होता है कि कृष्ण का संबंध दो प्रकार से, मथुरा वालों से भी और ब्रजवासियों दोनों से, किंतु उनका यह संबंध वृंदावन में अधिक दृढ़ है, और यहाँ पर ऐश्वर्यगत प्रेम है। परीक्षित महाराज जी अपने संबंध से पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके संबंध से ये लगते हैं उनके वंश में आए हुए हैं। परीक्षित ये एक और प्रश्न करें, देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभि यदुपूर्जं सह आवासित। उन्होंने मनुष्य शरीर को ग्रहण कर आश्रय कर कितने वर्ष तक विष्णु वंशियों के साथ में रहे, द्वारका में रहे, मथुरा में रहे, वृंदावन इत्यादि। तो भगवान का कुछ लोगों का ऐसा विचार है, भगवान का कोई शरीर नहीं है, निराकार है, उनका कोई भी शरीर नहीं, किंतु जब जगत में आते हैं तो मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, मत्स्य रूप में, कुरुप में, बराह, लोगों की ऐसी धारणा है। किंतु बात यह ठीक नहीं। यहां पर देहम आश्रित्य, देहम मानुषम आश्रित्य का तात्पर्य क्या है? उनका अपना ही रूप है। नवकिशोर नटवरवेश, मुरली का धारण किए हुए अत्यंत किशोर उनका अपना रूप है। उसी से ही समस्त अवतार निकलते हैं और उन्हीं से ही समस्त जगत की सृष्टि इत्यादि होती है। इसलिए उनका रूप है, उसी रूप से वो गुरु वृंदावन में नित्य रहते हैं, जोग माया के द्वारा उसको इस जगत में प्रकट करते हैं। जब वो आते हैं अपने धाम के साथ में 84 कोष ब्रजमंडल को लेकर के यहाँ पर अवतीर्ण होते हैं, लीलाएं करते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कहीं कहीं धाम के साथ में आते हैं, किंतु यह बात भी ठीक नहीं मालूम पड़ती जब विचार करें। उनका धाम यहीं पर है, यही धाम है। लोक लोचन में साधारण लोगों के यहाँ उसको प्रकट मात्र करते हैं। वो लोग वृंदावन में नित्य ही है, यहाँ भी प्रत्येक ब्रह्मांड में उनका ये धाम है। कभी वो धाम चला नहीं जाता और फिर लौट करके नहीं आता, उसका एक अप्रकट का भाव मालूम जब दिखाई नहीं पड़ता है। और जब कृष्ण जन्म लेते हैं उस समय जोग माया के द्वारा हमारा संबंध इससे कर देते हैं, इस समय उनकी लीलाएं देख पाते, किंतु धाम यहीं रहता है। इसीलिए कहा गया मधुपुरी में सब समय जत्र सन नहीं तो हरि, मधुपुरी में सब समय उसको छोड़ करके नहीं जाता। वृंदावन के लिए कहा गया वृंदावनम प्रत्यज पादम एक अनगच्छत, वृंदावन को छोड़ करके कहीं एक पग भी नहीं जाती। और द्वारकापुरी के लिए भी ऐसा कहा गया द्वारकापुरी में
गोविंद भुज गुप्तायाम,
गोविंद भुज गुप्तायाम दारावत्या सब समय द्वारकापुरी में वो रहते हैं, कभी छोड़ करके नहीं जाते। साधारण आदमी इन चीजों को समझ नहीं पाता, कंट्राडिक्टी समझता है, किंतु ठीक है। जो जो पुरिया हम यहाँ पर देख रहे हैं, मथुरापुरी, द्वारकापुरी, वृंदावन और गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सब वहां पर है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मनुष्य देह को आश्रय करके माने यहाँ पर प्रकट करके होता है, यहाँ पर आकर के मनुष्य शरीर को प्रकट करते हैं। ये कह रहे हैं टीकाकार, जिस प्रकार से जीव जन्म जन्मांतरों की कर्म वासना से इस जगत में बाध्य होकर के आता, किंतु भगवान के लिए बात नहीं, साधारण आदमी समझते हैं ये कर्म के फल से ही भगवान अपना जन्म लेते हैं, किंतु ऐसी बात नहीं। वो लीला विनोद के लिए इस जगत में आते हैं। हम लोग जैसे जैसा भी कर्म कर रहे हैं इसके अनुसार में फिर अगला जन्म हो सकता है, इसके पहले कोटि कोटि जन्म हो गए हैं। गीता में भी अर्जुन को कृष्ण ने बतलाया, अरे तुम मूर्ख हो करके, अज्ञानी हो करके और पंडितों जैसे बात कर रहा है, क्या वो श्लोक असोच्यान प्रज्ञावादान भाष्य गतासु न गतासु, अरे मूर्ख होकर के पंडितों जैसी बात करता है, अरे जो चला गया है जो नहीं चले गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते, काम कौन चला गया तुम समझता है कि हम इसके पहले नहीं थे, अरे हम लोग इसे बहुत पहले थे, ऐसा कोई जीव है जो नहीं, जो पहले नहीं था और पीछे भी रहेगा, किंतु शोक करता है जो चले गए कहीं नहीं जाता है। इसे बहुत दिन पहले तुम और हम दोनों थे, किंतु मुझे याद है अपने जन्म का, तुम्हें याद नहीं, बस इतना ही। तो जी हम जितने भी हैं भूले भटके हुए आए हैं और अपने अपने कर्मों को भोग करने के लिए बाध्य हैं, सुख दुख भोगने के लिए भी बाध्य हैं। हम लोग इस रूप में स्त्री और पुरुष उस जगत में नहीं हैं, भगवान के दास दासी हैं। यहाँ भूल करके आए हैं, कुछ दिनों में रैन बसेरा है, अपना बांध लिया है घर, किंतु जाना जरूर है। भगवान का ऐसा नहीं है, कर्म फल बाध्य नहीं है, उनके परिकरों का भी ऐसा ही है। वो अपने कर्म वासना से उनका जन्म मरण और सुख दुख नहीं होता। जैसे द्रौपदी जी हैं, उनके पुत्र मारे गए 5, उनको निर्वस्त्र करने की चेष्टा की गई, जंगल में चारों तरफ में वन में अपने पतियों के साथ में राजभवन छोड़ करके जाना पड़ा। सीता जी को 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ, 14 वर्ष, और इसके बाद में फिर आजीवन हो गया। ये कर्म फल नहीं। पांडव लोग वन गए, राज्य उनका ले लिया गया, ये क्या चीजें हैं? बद्ध जीवों जैसा लगता है किंतु बद्ध जीवों जैसा नहीं। वो लीला करके हम लोगों को शिक्षा देते हैं। ये भगवान को भी आकर के ऐसा करना पड़ता है तो तुम लोगों की तो बात क्या। इसलिए भगवान का भजन करो, इसी में सुख और शांति। इसलिए कृष्ण का इस जगत में आना, मथुरा जाना, फिर मथुरा से लौट करके ब्रज में जाना, वहाँ से लौट करके आना, द्वारकापुरी में गए, ये सब उनकी लीलाएं हैं जगत को आकृष्ट करने। इसलिए देहम मनुष्यम आश्रित्य, मनुष्य देह धारण किया, या और भी लीला मनुष्य आगे शब्द आएगा, लीला से मनुष्य हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं, उनका स्वरूप ही है ये दुभिज श्याम सुंदर, उसी से गोलोक बैकुंठ में रहते हैं, उसी लीला को यहाँ पर जगत में प्रकट करते हैं। हम लोग उसको देखते हैं, साधारण आदमी कहते हैं कि वो निराकार हैं, पीछे से आए। से प्रकाशानंद सरस्वती से वाराणसी में भगवान के शरीर के संबंध में कुछ वार्तालाप हुआ। उस प्रकाशानंद सरस्वती ने बतलाया कि भगवान का शरीर और भगवान दो हैं, भगवान निराकार हैं। जब किसी शरीर में वो आते हैं, मायाबद्ध होकर के आते हैं, और जीव आता है अज्ञानबद्ध होकर। प्रकाशानंद ने बताया, इसलिए भगवान का शरीर नहीं है। अरूपवत एव ही तत्प्रधान उत्पाद, भगवान अरूप के समान दिख पड़ते हैं, ये रूप नहीं है, और यही उनका अरूप ही प्रधान है, ये बतलाया। वो महाप्रभु जी ने कहा, जैसे तुम इसी श्लोक के द्वारा, इसी सूत्र के द्वारा उल्टा तो कर रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है, ये श्रुतियों में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। अरूपवत एव ही तत्प्रधान, भगवान अरूपवत नहीं, रूपवत हैं, और उनका यह विग्रह जो है वही तत्प्रधान उत्पाद, वही नित्य है प्रधान के रूप। और उपवत यह शब्द बनता नहीं है, और उपवत मैंने न रूपवत, भगवान और जिसका कोई स्थिति है उसके समान कोई होता है, जिसका रूप नहीं है उसके समान क्या होगा, इसलिए वत शब्द वहां पर प्रयोग नहीं होता। रूप के समान ये तो हो सकता है, और रूप के समान मैंने क्या, इसलिए यहाँ पर उसका उस रूप में नहीं होकर अरूपवत एव ही न रूपवत, बल्कि रूप ही साक्षात वो हैं। कृष्ण का जो रूप है और कृष्ण दोनों एक है, देह देह में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनको विष दिया गया। काली ने उनको दशा आग खा लिया, कभी उनकी मृत्यु नहीं। जब प्रहलाद महाराज जी की नहीं, मीराबाई की नहीं हुई, भक्तों का ही नहीं होता तो भगवान की तो बात क्या। इसलिए भगवान का, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको कहा, तहार विभूति देह सब चीजा का, उनकी विभूतियाँ शरीर, विभूति माने क्या, कृष्ण के जितने भी लीला परिकर, उनके अवतार इत्यादि, उनसे निकलने वाले जीव इत्यादि जितने भी हैं, ये सब सच्चिदानंदमय है। चित विभूति अच्छा दिया करो हो निराकार, चिदानंद देह तार स्थान परिवार, तारे कहो प्राकृत सत्य रविकार। इसी प्रकार से उनके मत का खंडन किया और बतलाया, जो लोग कहते हैं कि भगवान का शरीर नहीं है, भगवान का विग्रह, भगवान का भगवान विग्रह जेना माने से पाषण भी है, जो लोग ये कहते हैं हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के अतिरिक्त और कोई भी राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान का रूप मानते हैं, जवन नहीं मानते, क्रिश्चियनिटी भी उनका रूप नहीं मानती कि तो प्रकारांतर रूप में मानती है, ये लोग भी मानते हैं। रूप मानना सबको पड़ेगा किंतु ऊपर से नहीं मानते, क्योंकि कुरान में भी ऐसा लिखा गया, इन्ना लहा खला का मैन सूरत ही उनका रूप है, और गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, ये भी बतलाया गया। इसलिए भगवान का रूप नहीं स्वीकार करने से चल नहीं सकता, तभी वो कर। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं जो लोग भगवान का विग्रह और रूप नहीं मानता वो पाषाणी के समान है। सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहांतस्य परमात्मना परात्मना हे उपादेय रहिता नैव प्राकृत प्रकृति जापचि। भगवान के जितने भी शरीर हैं, जैसे रामचंद्र जी का, बराज जी का, कुर्म का, ये वैकुंठ में सब नित्य हैं, कभी कभी वहाँ से इस जगत में प्रकटित अवतरित होते हैं। इस तरह से उनको तर्क में परास्त किया, अंत में इनको मान लेना पड़ा, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी भगवान का रूप मानना पड़ा। इसलिए सनातन गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी ने भगवान के रूप को नित्य बतलाया है, कृष्ण रूप। नैता नैशाति दुस्सह खुन्मा तक्ता दपमपि बाधते पिबंतम तन मुखाम भोज च्यूतम हरि कथा अमृतम। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपके मुख से भगवान की जो हरि कथा अमृत झर रही है उसको पान करके मैं नित्य तृप्त हूँ, मुझको और अलग रूप में पानी और भोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है मुझे, मुझे तनिक भी ये कष्ट नहीं दे रहे, इसलिए आप इनकी कथाओं को जारी रखें और हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार से पूछने पर सुखदेव गोस्वामी जी उनके प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। आज यहीं तक वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासं परितानं पावनेभ्यो भगवान का एक निर्विशेष स्वरूप, इसमें कोई लीला विलास नहीं, ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप में सर्वत्र जो व्याप्त हैं उनको बात नहीं करना, व्याप्त नोति व्याप्त रहते हैं, देखा नहीं जाए, उनकी कोई क्रिया भी लक्ष्य नहीं की जाए, कितु है। जिस लीला में अंगुष्ट परिमाण में वही कृष्ण जीवों के हृदय में व्याप्त होते हैं वो विष्णु कहलाते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, किंतु इनमें भी कोई लीला विलास इत्यादि नहीं। तो इसके ऊपर जब चलें तो षड़ैश्वर्य परिपूर्ण नारायण तत्व,
नारायण तत्व में जन्मादि भी व्यापार नहीं, लीलाएं भी वैसी नहीं, किंतु शांत दास्य भाव से कुछ जगत में लीलाओं को प्रकाश करते हैं। भगवान माने क्या? छह भावों से युक्त, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, जस, श्री, ज्ञान, वैराग्य। दूसरे दिन हम लोग एक एक गुण लेकर के नारायण तत्व में, राम में और कृष्ण में, ये तीनों ही भगवान हैं, किंतु इनमें क्या पार्थक्य है, इनमें क्या विशेषता है, किसी तरह से ये छह भग हैं, हम विचार करेंगे। विशेष करके कृष्ण में जैसा विलास है वैसा किसी भी तत्व में नहीं। इस विलास के कारण ही कृष्ण को स्वयं भगवान कहलाते हैं। स्वयं भगवान कहने से भी इसमें मथुरेश, द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेश तीनों ही आ जा सकते हैं स्वयं भगवान कहने से, किंतु स्वयं जो ब्रजेंद्र नंदन हैं, अखिल रसामृत सिंधु हैं, ये भगवत्ता में भी स्वयं भगवान से भी कुछ ऊपर के मालूम पड़ते हैं। यदि स्वयं भगवान के अंतर्गत ही तभी द्वारकाधीश को हम स्वयं भगवान कह सकते हैं, मथुरेश को भी कह सकते हैं। तो कृष्ण का जो ब्रजेंद्र नंदन है उससे कुछ विशेष कुछ भाव हो जो कि नंदनंदन, इसीलिए अंत में उन्होंने कहा आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावन रम्या काचित उपासना पदु पदु वर्गे न जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमान भक्तिमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम तत्प्राण। इस तरह से यह वर्णन किया है। अगले दिन हम लोग इस सब पर अच्छी तरह से विचार करेंगे, कैसे स्वयं भगवान किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, कृष्ण का या इसमें कौन सी विशेषता है, इन तत्व पर विचार। इन सब का मूल यही है जो राधा कृष्ण के चरणों में हम लोगों का रति हो, उनके चरणों का लोभ हो, इसी को विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न प्रकार से आज यही तक सुना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च विभाषं पतितानां
महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामसुते प्रणमामि हरिप्रिय। हा देवी काकुहर गद गदयाद्यवाच जाचे निपत्त भुवि दंडवतोद्भटार्थी अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य विद्वान् गंधर्विकेतव गणे गणन अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जटंजागुदरोचिसांगिदधतंगपट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदिरसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामो भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान कृष्ण। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विघ्नैराधितं नयमां।